देवियों सज्जनों, गीता के 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले अभी जैसे स्मृति जी ने बड़ी सुंदर बात कही, दिल को छू गया। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, पर जब किसी मंदिर से ये बात उठती है वो एक अलग स्वरूप देता है। दुनिया में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन के नाम पर चलते हैं। रिलीजन को बेस बना के चलते हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, पुरुष बड़ा है स्त्री छोटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, एक खास जाति का बड़ा है दूसरे छोटे हैं, रिलीजन के नाम पर चलते हैं। पर अगर किसी मंदिर से ये बात उठे तो वो यूनिक होता है। और मैं आशा करता हूं हम अपने जीवन में भी और दूसरों को भी ये प्रेरित करें कि बेटा और बेटी में फर्क ना करें, ये पाप होता है और महापाप होता है। हम अनजानों से हजारों सालों से करते आ रहे हैं, ईश्वर सबके लिए बराबर है, संसार में सब बराबर हैं। और हम मां बाप होकर भी अपने बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। तो ये अगर हम समझते हैं तो हम अपने अंदर एक अच्छाइयां रखते हैं, नहीं समझे हैं तो समझ जाएं तो अच्छा है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े काम करने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर करते हैं, अगर उन्हीं को सुधार दें, हमारे लाइफ एक अलग तरह का लाइफ होगा। हम अनजाने में कितने लोगों को दुख देते हैं, धर्म के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, सुपीरियरिटी के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर, और सहने वाले सह सह करके आदत बना देते हैं और हमें लगता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। पर अगर कहीं से आपको हमें ठोकर लगता है, समझ आता है, उसको बहुत जल्दी ही अपना लेना चाहिए। अगर नहीं अपनाए हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे अनजाने से किए गए पापों की मुक्ति के लिए भी, प्रायश्चितता के लिए अच्छी है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें, सबको बराबर दृष्टि से देखने की क्षमता दें। आगे चलते हैं, गीता के 13वें अध्याय के आज अंतिम भाग है, मेरे साथ बोलेंगे। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते as the all pervading ether akash is not tainted because of its subtlety, so the self seated everywhere in the body is not tainted. जैसे आकाश सब जगह है और आकाश के अंदर सब कुछ हो रहा है, लोग पाप भी इसे आकाश में करते हैं, पुण्य भी इसे आकाश में करते हैं, सारे अच्छे काम आकाश में हो रहे हैं, बुरे काम भी आकाश में ही हो रहे हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापक है, कहीं तो कुछ छुटा नहीं है कि आप कुछ करो और वहां आकाश ना हो। पर इससे आकाश गंदा नहीं होता है या आकाश साफ नहीं होता है। धरती जितनी भी बड़ी है, जो भी आप करते हैं तो धरती पर करते हैं, उससे ना धरती गंदगी गंदा होता है ना अच्छा होता है। फूल खिला है तो आकाश में ही खिलता है, पर इससे आकाश सुंदर नहीं होता है।
गोबर पड़ा है तो आकाश में ही होता है, पर इससे आकाश गंदा नहीं होता है। आकाश तो हमेशा शुद्ध होता है, प्योर होता है। उसकी प्योरिटी को किसी भी तरह से आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप गंदा नहीं कर सकते। इसी तरह आपके हमारे अंदर वो आत्मा है। शरीर से हम कितना अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं मन से, उससे आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। वो जितना शुद्ध है आपके पैदा होते समय, वो अभी भी उतना ही शुद्ध है। दुनिया में दो तरह के कंसेप्ट हैं आत्मा और शरीर के बारे में। एक मानते हैं कि हम पैदा ही सी बाय बर्थ हम सीनर हैं, पापी हैं, और उस पाप को छुड़ाने के लिए हमें किसी की सहारा लेनी पड़ेगी जो हमारे पापों को खुद उठा लें और हमें पुण्यात्मा बनाए, जो बेसिकली वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न रिलीजियस कंसेप्ट है। एक दूसरी अवधारणा है, दूसरी परसेप्शन है कि हम तो बाय बर्थ बाय नेचर शुद्ध हैं, पवित्र हैं। अगर हमारे से कोई गलत काम होता है, इट्स बिकॉज ऑफ माय माइंड, माय फिजिक। तो मैं गलत हूं, मेरे मन खराब है, मेरे शरीर खराब है, मैंने अपने आप बनाया है। तो मैं चाहूं तो मैं अपने आप को अच्छा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं अपने आप को गंदा कर सकता हूं, पर मैं बाय नेचर पवित्र हूं, सिनलेस हूं, प्योर हूं। इसलिए मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं जो मेरे पापों का ठेका ले और मुझे पुण्य बनाए। हमारे सारे शास्त्रों का यही विचार है कि तुम जन्म से शुद्ध हो। जब बच्चा पैदा होता है, जात कर्म संस्कार होता है, तो बाप पापा बच्चे के कान में मंत्र बोलता है, एक रिचुअल है, कहता है कोसी कतमोसी, कान में पूछता है तुम कौन हो, क्या हो, और खुद ही उसको रिचुअल में मंत्र में बोलता है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, प्योर हो, बुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, निरंजन हो, हर तरह के सिनलेस हो, कलंक रहित हो। हम कितने भी पाप या पुण्य शरीर से होता है या मन से होता है, आत्मा तो कभी भी टेंटेड नहीं होता, बिल्कुल वैसे जैसे आकाश में गंदे से गंदगी करने से पहले भी आकाश था, गंदगी हट जाएगी तो भी आकाश इतना ही शुद्ध है। फूल खिले तो भी आकाश फूल खिलने से पहले था, फूल जब मुरझा जाएगी तब भी आकाश ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। इसी तरह ये शरीर है, उसे हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें, शरीर से पहले भी वो आत्मा थी, शरीर के बाद भी वो आत्मा है। अच्छे शरीर हो या बुरे शरीर हो, ये शरीर ये मन के द्वारा आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आत्मा तो हमेशा शुद्ध रहता है। आकाश की तरह हमारे भीतर बाहर पर सदा शुद्धता होती है। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों से आत्मा प्रभावित नहीं होता है, जैसे संसार में घटने वाली चीजों से आकाश को फर्क नहीं पड़ता। पर जो हमारा सुख दुख है, जो हमारे अच्छे या कर्म बुरे कर्मों से जुड़ा हुआ है, उसका कारण दूसरा है। जो आत्मा सुख और दुख भोगता है, उसका कारण अच्छा या बुरा जो हम करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, उससे सुख दुख डिसाइड नहीं होता है। वो इससे होता है कि जो तुम करते हो या मैं करता हूं, उसके साथ मेरे अटैचमेंट कितना है, तादात्म्य। जब मैं उसके साथ अपने आप को एक बना देता हूं, एकाकार बना देता हूं, तो फिर वो मुझे सुख देता है। अगर अच्छा रिजल्ट है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर वो वही होता है तो मुझे सुख मिलता है, अगर नहीं होता है तो मुझे दुख मिलता है। ये जो तादात्म्य है, ये जो अटैचमेंट है, दोनों मिलके एकाकार हो जाना, आत्मा के साथ शरीर का और हमारे किए हुए कर्मों के साथ हमारा तादात्म्य, जो मैं कर रहा हूं उसको भी मैं सस्ता हूं कि मैं ही करता हूं, जो नहीं कर रहा हूं उसके साथ भी मैं चिपका हुआ हूं कि मैं करता हूं, सुख दुख का कारण वो होता है। किसी के मरने से किसी को दुख नहीं होता, दुख इसीलिए होता है कि हमारे से वो अलग हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य को मैत्री कहती है, उनकी पत्नी है। अभी आप स्मृति जी कह रही थी महिलाओं के बारे में, मैत्री पत्नी है याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। उनकी दो पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री, और आप दोनों अपनी इच्छा से जो करना है करो, घर गृहस्थी संभालो और किसी से शादी करना है करो, पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो वैराग्य आ गया, मैं सन्यासी लेना चाहता हूं। मैत्री याज्ञवल्क्य को कहती है कि जिसे आप प्यार कहते हो, प्रेम कहते हो, वो तो स्वार्थ का दूसरा रूप होता है। जो पति कहता है कि मैं पत्नी से प्रेम करती हूं, या पत्नी सोचती है कि मैं पति से प्रेम करती हूं, करता हूं जो भी, तो उसके पीछे खुद के प्रति प्रेम होता है। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसीलिए जो जो मेरे प्रति प्रेम रखता है, मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए वो अच्छा है, उसके प्रति मेरा प्रेम होता है। अगर पति या पत्नी आपको प्यार करना बंद कर दे तो उस दिन आपका भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम बाय नेचर सेल्फिश हैं। कोई मरता है तो दुख इसीलिए नहीं होता है कि व्यक्ति क्यों मर गया, दुख इसीलिए कि मेरे से वो अलग हो गया, मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। उससे जो मुझे फायदा था, वो फायदा इमोशनली भी हो या सोशियली हो, कुछ भी किसी भी तरह का, हम इमोशनल फायदा को कभी कभी समझते नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा वो होता है, आप एक छोटा सा पेट पालते हो, कुत्ता या बिल्ली पालते हो, क्यों लोग लाखों लोग पालते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उनको उससे इमोशनली सपोर्ट मिलता है। जब पति पूछता नहीं है ठीक से, घर में नहीं होता, पत्नी नहीं पूछती है, या बच्चे नहीं पूछते हैं, या आपको टेंशन होता है, वो बेचारा कुत्ता बिल्ली जो भी है वो आपके साथ चिपक जाते हैं, आप सुखी हो दुखी हो आपसे लड़ते नहीं है, वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप हजारों खर्च कर देते हो उन पर। बच्चों के लिए आप कुर्बान हो जाते हो, पर तब तक जब तक बच्चे आपके आपके खिलाफ ना जाएं, इस दिन खिलाफ जाने लगते हैं तो फिर आपका भी अपना प्यार घटने लगता है। तो मैत्री कहते हैं प्रेम तो खुद से ही होता है, और जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों से प्यार करता है, ये स्वाभाविक है। तो सुख और दुख हमें अपने शरीर से या अपने लोगों से जो अटैचमेंट है वो सुख या दुख देते हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी के बड़े नाट्य का ड्रामा लिखने वाले की बड़े प्रसिद्ध डायलॉग आप जानते हैं, होल वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टिंग, हम सब ड्रामा करते हैं थोड़े दिन के लिए। ये संसार तो हजारों लाखों करोड़ों सालों से है ही, हम आते हैं अपने अपने किरदार अपने अपने रोल निभाते हैं फिर चले जाते हैं, पर ऐसा रियल लाइफ में होता, ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि जब आप एक्टर होकर के स्टेज पर आते हैं, आप राम की रोल निभाते हैं या सीता की रोल निभाते हैं, आपको ईमानदारी से निभानी पड़ती है, आपको पता है कि आप सीता नहीं हो राम नहीं हो, पर स्टेज पर जब आप एक्ट करते हो तो पब्लिक के आंखों में आंसू आती है, क्योंकि वो आपके अंदर उस आपके एक्टिंग में उस ईमानदारी को देखता है। आपको ईमानदारी से वो रोल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ड्रामा फ्लॉप होता है। पर जैसे ही आप स्टेज से बाहर जाते हैं, फिर वो राम रोल करने वाले राम को आप पति नहीं मानते हैं, या सीता रोल करने वाली लड़की को आप पत्नी नहीं मानते हैं। मानने लगे तो बड़ा अनिष्ट होने लग जाएगा। पर समस्या यह है, रियल लाइफ तो छोड़िए, हम ड्रामा में भी रियल अटैचमेंट ढूंढ लेते हैं। आजकल के फिल्मी हीरो हीरोइनों को देखिए, हीरो का मतलब होता है जो ब्रेव मैन है, जो दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों को प्रोटेक्ट करता है। कितने रियल लाइफ के हीरो हीरोइनियों को आप जानते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं, आप फॉलो करते हैं? अब किसको हीरो बोलते हो जो फिल्मी में हीरो का ड्रामा करता है? करोड़ों लोग उसके फैन हैं, उसके लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। और जो रियल लाइफ में हीरो होते हैं, कितने लोग उनके फॉलोअर हैं? हमें ड्रामा में भी हम अटैच्ड हो चुके हैं, रियल समझते हैं, और यहीं से सुख दुख शुरू होता है। यूएसए में एक कहानी है कि एक आदमी एक ड्रामा ग्रुप बना, तो वो लिंकन के लाइफ पर ड्रामा करते थे और ड्रामा बहुत सक्सेसफुल हुआ, प्ले बहुत अच्छा हुआ, तो अलग अलग शहरों से उनको इनविटेशन आया, तो वो लिंकन के लाइफ पर अलग अलग जगह ड्रामा करने लगे। अच्छी कमाई हुई, शहरों में बहावाई हुई, ऐसे करते करते 10-15 साल अलग अलग शहरों में पार्टीज के फंक्शन में, उसमें जो लिंकन का रोल कर रहा था वो 10-12 साल से लिंकन का ही रोल करता था। अब ऐसा हो गया कि वो अपने रियल लाइफ में भी लिंकन के जैसे बिहेव करता है, उसके तरह थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है, बोलते समय थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलता है, तुतला करके बोलता है, उसी की तरह करता है, उसी की तरह बात करता है। तो शुरू शुरू में तो ठीक है, पर कोई 24 घंटे सालों साल तक लिंकन जैसा बिहेव करे, घर में बच्चों के साथ भी, पत्नी के साथ भी, परिवार के साथ भी, लोग बड़े परेशान हुए, बोले आप नॉर्मल तो होकर बात करो। तो बोले नहीं, अब मैं ऐसा करते करते मैं अब लिंकन बन चुका हूं। अब वो लिंकन की तरह स्पीच देने लगता है, घर में भी, बाहर में भी, हर जगह वो लिंकन जैसा बिहेव करने लगता है। कहता है मैं क्या करूं, मैं लिंकन बन चुका हूं। उसको जब कहते कि नहीं तुम तो अमुक हो, लिंकन का रोल करते थे, वो ऑब्जेक्ट करता था, नहीं मैं लिंकन हूं। वो 10 साल के ड्रामा करते करते अपने आप को लिंकन समझ बैठा है। तादात्म्य, ध्यान दीजिएगा, लिंकन की कहीं कोई बुराई हो तो उसके रोए रोए खड़े हो जाते थे, तारीफ हो वो बिल्कुल मानो लिंकन खुद रिएक्ट कर रहा हो, अंदर से आता था। लोगों ने कहा ये झूठ करता है, ड्रामा करता है, पब्लिसिटी चाहता है। उसको खूब समझाए, डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि उसका एडिक्शन हो चुका है, उसका सेकेंड नेचर बन चुका है, इसको कैसे इलाज करें? कुछ नहीं हुआ, वो घर बाहर हमेशा लिंकन की तरह बिहेव करने लगा, अपने आप को लिंकन ही समझता था, सोते बैठते डंडा पकड़ के पास रखना, जो भी उनकी हाव भाव चाल सब नकल करता था। अब वो उसका पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, पार्ट ऑफ नेचर हो चुका है। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, घर वालों ने भी बहुत क्रिटिसाइज करने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि पता करते कि यह सचमुच क्या अंदर ऐसा चेंज हो गया इसका, या ये ड्रामा करता है पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेताओं के अगर शकल मिलता जुलता है तो अपनी पब्लिसिटी के लिए उसी की तरह बन के फिरते हैं, इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। ये लाई डिटेक्टर क्या होता है भाई? अगर आप नॉर्मल बोलते हैं जैसा है, तो बोलने के साथ आपके हार्ट बीट जो है वो फंक्शन करता है, नॉर्मल रहता है। पर जैसे ही आप जो बोला, अब जो मन में जो सोचा, अगर उसके बीच में कनेक्शन है तो हार्ट बीट नॉर्मल रहता है। जो बोला, अगर माइंड में कुछ और चल रहा है तो हार्ट बीट में डिफरेंस आता है, चेंजेस आता है। उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए करने की सोचा, पता करें कि सचमुच वो दिल से ही बदल चुका है या ऐसे ऊपर से नाटक करता है? डेट फिक्स हुआ कि अमुक तारीख के दिन तुम्हारे लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा। लोग उसको बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसने सोचा कि इतने सारे लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि मैं ड्रामा करता हूं, लिंकन के जैसे बिहेव करता हूं, मुझे अपने नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए। उसने सोचा चलो आगे से मैं लिंकन का नाम ही नहीं लूंगा, मेरा जो अपना नाम है मैं वही बोलूंगा, मैं लिंकन का नाम नहीं लूंगा, उसके तरह बिहेव नहीं करूंगा। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में जो कुछ पूछा गया उसने लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सब अपने बारे में बोला। टेस्ट पूरा हुआ, रिजल्ट झूठ था। क्या मतलब है? अंदर से वो लिंकन बन चुका है, ऊपर से अपने आप को चेंज किया, वापस अपने पुराने नाम पर आने को कोशिश किया पब्लिक प्रेशर से, पर अंदर से वो लिंकन बन चुका था। उसने जो कुछ अपने बारे में बताया वो झूठ निकला, मतलब दिल से वो लिंकन बन चुका था। कहने का भाव है देवियों सज्जनों, ड्रामा करते करते भी आदमी दिल से इतना जुड़ जाता है, फिर उसी को के साथ अपने आप को देखने लगता है, और यहीं से सुख और दुख शुरू होता है। लिंकन को गाली दे, लिंकन तो मर चुका है, दर्द यहां होता है। जिस चीज के साथ आप अपने आप को जोड़ देते हैं, वो आपके घर का कोई जानवर हो, आपके बैकयार्ड में खिलने वाला कोई प्लांट हो, आपके बीवी बच्चे पति परिवार हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपका देश हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, जिसके साथ आप जुड़ जाते हैं और वहीं से आपका सुख दुख शुरू होता है। जब आप ड्यूटी समझ के करते हैं, इवन आप अपने घर में रिलेशनशिप को भी आप उसी अंदाज से देखते हैं, तो आप सब कुछ करते हुए भी अंदर खाली रहते हैं। उस आकाश की तरह आत्मा का स्वभाव है स्वाभाविक रूप से शांत शुद्ध आनंदपूर्ण। पर जो सुख दुख मिलता है वो हमारे अटैचमेंट के कारण, और इतने ज्यादा हम वस्तु के साथ अपने आप को मिला देते हैं, फिर हम समझ नहीं पाते कि मेरी अलग आइडेंटिटी है, मेरे बच्चों की अलग आइडेंटिटी है, मेरे शरीर की अलग आइडेंटिटी है, मेरे आत्मा की अलग आइडेंटिटी है। जब ये हम भूल जाते हैं वहीं से सुख और दुख शुरू होता है। और वस्तुतः आत्मा बाहर के प्रपंच में ये जो कैओस है भी वो शांत और निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त मतलब इन्वॉल्व नहीं रहता है। हम हजारों बुराई अच्छाई में दुनियादारी में फंसे रहें, आत्मा तब भी वैसे ही शांत है जैसे पानी में कमल का पत्ता खिलता है। कितने गहरे पानी में हो, पत्ते में पानी भी गिरते हैं कमल के पत्तों में, पर आपने कभी देखा कमल के पत्ते या कमल के फूल को पानी में? उसके ऊपर पानी अगर गिरा होगा ना पत्ते के ऊपर, वो पानी से बूंद जो है वो हिल रहा होगा, वो चिपकता नहीं है। कमल के पत्ते के तरह आत्मा सब अच्छाई बुराई के अंदर शुद्ध पवित्र वैसे ही रहता है। हम मेंटली अटैच्ड होते हैं, वही सुख दुख का कारण होता है। अगला पढ़ते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। just as the one sun illumines the whole world, so also the Lord of the field, जिसको हम इतने दिनों से 13 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र means field. This body is a field, and the owner of this body is called क्षेत्रज्ञ. Supreme Self illumines the whole field. No descendant of Bharata dynasty. हे अर्जुन, भारत, भरत वंश की संतान, जैसे एक सूर्य सारे पृथ्वी को प्रकाश देता है, गंदगी में, अच्छाई में, साफ समुंदर में, पहाड़ों में, अच्छे में, बुरे में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पर किसी में इन्वॉल्व नहीं है. इसी तरह ये तुम्हारी आत्मा शरीर के हर पार्ट को, वो मन हो, बुद्धि हो, शरीर के अलग अलग अंग हो, नर्व सिस्टम हो, सबको एक्टिव रखता है, सबको लाइव करता है, पर खुद किसी में इन्वॉल्व नहीं है. इसी तरह परमात्मा ये सारे संसार के हर चीज को चलाता है, पर वो खुद किसी में इन्वॉल्व नहीं है. आपके घर की लाइट इलेक्ट्रिसिटी के कारण आता है, आपके घर के फ्रीजर इलेक्ट्रिसिटी के कारण फ्रीज करता है, आपके घर के हीटर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट करता है, आपके घर में चलने वाले वो हर चीज जो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण करता है. इलेक्ट्रिसिटी ना हो ना आपको फ्रीजर फ्रीज करेगा, ना हीटर हीट करेगा. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्रीजर में चिपका नहीं है, ना वो हीटर के साथ चिपका हुआ है, वो उसका नेचर है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी धर्म है कि उसके कारण बाकी सब में जान आ जाती है, वो सब एनलाइवन हो जाते हैं. इसका अर्थ नहीं है कि फ्रीजर का कारण इलेक्ट्रिसिटी है या हीटर का कारण इलेक्ट्रिसिटी है. तो सबका कारण है. गंदे आदमी के अंदर भी वही आत्मा है जो अच्छे आदमी के अंदर है. पहाड़ों में भी वही परमात्मा की क्रिएशन है जो आकाश में है. वो सब में उसी की सृष्टि दिखती है, पर सब में वो डिटैच्ड है इलेक्ट्रिसिटी की तरह. वो सिर्फ अपने नेचर के हिसाब से ड्यूटी निभाता है, पर किसी के साथ अटैच नहीं है. नहीं, फ्रीजर ज्यादा बेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कहे कि मैं फ्रीजर हूं, मुझे हीटर से कोई लेन देन नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. सब जगह है, सारे संसार को प्रकाशित करता है सूरज की तरह, पर सबसे अलग रहता है. एक ही चैतन्य है, एक ही चेतना है, एक ही कॉन्शसनेस है. पूरे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को चलाता है, और कभी कभी ये एक दूसरे से अपोजिट हैं. आपका कान सुनता है, आंख देखता है, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे के साथ. उल्टा एक दूसरे से अपोजिट हैं. आंख सुन नहीं सकता, कान देख नहीं सकता. ये सारे इंद्रियां फंक्शन करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी है. वो नहीं हो तो सब डेड है. पर इसका अर्थ नहीं है कि कान आत्मा है, आंख आत्मा है, मन आत्मा है, शरीर आत्मा है. नहीं, उसके कारण सब चलते हैं. इसी तरह परमात्मा के कारण सारा संसार चलता है. और उस जो चैतन्य की आत्मा का जो नेचर है वो एक ही है. वो खराब आदमी के अंदर हो या अच्छे आदमी के अंदर हो, वो स्त्री के अंदर हो या पुरुष के अंदर हो, वो बच्चे के अंदर हो या जवान के अंदर हो, वो अफ्रीकन के अंदर हो या यूरोपियन के अंदर हो, सबके अंदर तो वो एक ही आत्मा है. वो चींटी में हो या इंसान में हो, वो पेड़ में हो या शेर में हो, उस हर आत्मा की जो क्वालिटी है, जो नेचर है, वो एक ही है. कोई चेंज नहीं है. जो चेंजेस है वो सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म है. जैसे जो आपके पास 50 तरह के लाइट्स जलते हैं, दिवाली में आप, न्यू ईयर में आप अलग अलग तरह के लाइट्स जलाते हैं, आपके घर में दिया जलता है, उसकी जो प्रकाश है वो एक ही है. और जो प्रकाश, जो लाइट है, उसका नेचर एक ही टाइप का है, फॉर्म अलग अलग है, क्योंकि आपके पास गोल्डन लैंप है, नहीं सिल्वर लैंप है, कोई क्ले लैंप है, कभी कभी उस पर कलर चढ़ा रखा है, कोई ब्लू कलर का बल्ब है तो कोई रेड कलर का बल्ब है, तो कलर आपको अलग अलग दिखता है, पर एक्चुअली लाइट तो एक ही है सबके अंदर। बाहरी दुनिया में अलग अलग जो दिखे पर वो एक ही है। लाइट पर समस्या यही है, लाइट से दुनिया में प्रकाश आता है, दिया जलने से, आपके बल्ब जलने से आपके घर की हर चीज आपको दिखता है, पर समस्या है जैसे ही घर की सब चीजें दिखने लगी हम लाइट को भूल जाते हैं कि इसी के कारण सब चलता है। ईश्वर के कारण ये संसार के हर चीज आपके लिए, आपके भोगने लायक है, ईश्वर ने ये सब आपके लिए बनाया भोगने के लिए, पर जब ये भोगने वाले चीजें सामने होते हम उसको बनाने वाले ईश्वर को भूल जाते हैं। ये आत्मा के कारण आपकी पूरा बॉडी फंक्शन करता है, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, आपके वाइटल एयर सब कुछ फंक्शन करता है, पर बॉडी और माइंड से इतने अटैच्ड हो जाते हैं हम भूल जाते हैं इसको चलाने वाला कौन है। ये प्रॉब्लम यहीं पर है, भूलना वही नहीं चाहिए, जो प्रकाशित है उनको भी जानो, जो नहीं है उनको भी जानो, जिस आत्मा के कारण तुम जिंदा हो उसको तुम जब इग्नोर करते हो तो मरते समय फिर हम पछताते हैं। बुढ़ापा में मरते समय हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें। लोग कहते हैं मरते समय भगवान का नाम लो, अच्छी चीज को याद करो तो सब अच्छा हो जाएगा। सज्जनों देवियों, ये बड़ा ट्रिकी चीजें हैं, पर भगवान इतना बुद्धू नहीं है, स्टूपिड नहीं है कि हमारे स्मार्टनेस को ना समझ पाए कि जिंदगी भर तो कुछ भी करो और मरते समय अच्छी चीज का नाम ले लो वही हो जाएगा। वैसे गीता में कहा मरते समय तुम्हारा जैसा विचार होगा तुम वही बनोगे, तो हमारे लिए ये बड़ा बड़ा काम की चीजें मिल गई कि जिंदगी भर जो करना है करो, बस मरते समय अच्छी चीजें सोच लेना, आगे सब अच्छा हो जाएगा। देवियों सज्जनों, यही तो ईश्वर की स्मार्टनेस है। मरते समय आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार आएगा जो जिंदगी भर तुम जिसके बारे में सोचते रहे हो। तुम्हारे बच्चे पंडित को बैठा के पूरी गीता पाठ करवा दे मरते समय लाखों बार, वो मृत्युंजय जप करा दे, तुम्हारे कान में घुस घुस के ओम ओम नारायण नारायण बोलते सुना दे, तुम्हें नहीं सुनाई देगा, तुम्हें तो सिर्फ पैसा दिखेगा अगर जिंदगी भर पैसा सोचता है, घर ही दिखेगा अगर जिंदगी भर घर ढूंढ सोचा है, सेक्स ही दिखेगा अगर जिंदगी भर सेक्स सोचा है, पैसा नाम सूझेगा अगर जिंदगी भर नाम ही सूझा है, वो भगवान तो तुम्हारे बच्चे के मुंह में आएगा, तुम्हारे दिल में नहीं उतरने वाला। ये तो ईश्वर की स्मार्टनेस है, आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते हो, खुद को बुद्धू बनाओगे पब्लिक को बुद्धू बनाओगे। मरते समय वही विचार आता है जो जिंदगी भर जिसके लिए तुमने सोचा है। पेड़ के साथ चिपके हैं तो पेड़ ही दिखेगा, और आगे जाकर पेड़ ही बनेंगे या पेड़ के साथ चिपकेंगे, ये खूबसूरती है ईश्वर की व्यवस्था की। और एक छोटा सा श्लोक करके खत्म करते, एक मिनट लूंगा, अब आज समाप्त करना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। Those who with the eyes of wisdom they see the difference between matter, kshetra or body and spirit, its knower means soul, or it is, if it is the universe then the supreme soul, know how to liberate life फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर दे अटेन द सुप्रीमेसी। वो आत्मा अलग अलग नहीं है, वो परमात्मा जो आकाश सारे संसार में है, पेड़ में भी वही, आकाश में भी वही, पृथ्वी में भी वही। तुम्हारे और मेरे अंदर की आत्मा की क्वालिटी में, नेचर में कोई अंतर नहीं है, सबकी नेचर एक जैसा ही है। हम ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, पत्थर का शरीर हो या स्टार का बॉडी हो या वाटर की बॉडी हो, ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो या ट्री की बॉडी हो, अलग अलग हो सकता है, पर उसके अंदर जो समा हुआ परमात्मा वो तो एक ही है, वो सब जगह है। जो इस चीज को समझ जाए, डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ल्ड एंड द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, तो फिर ये डिस्टिंक्शन जब रियलाइजेशन में आ जाए तो फिर वो परम तत्व को, उस सुप्रीम रियलिटी को जो समझ जाता है, फिर वो इस संसार पे हर तरह के सुख दुख से ऊपर जाता है, वो परमानंद को प्राप्त करता है। इसी के साथ आज हमारे ये 13वां चैप्टर पूरा हुआ। आगे हम कुछ एक दो महीने तक, हमारी योजना है कि कोई बुक ना लेकर के सोचते हैं, अगर आपके मन में, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, अकेले में पूछते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के मन में कोई चीजें जानने की इच्छा है, किसी टॉपिक पर किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, आप मुझे लिख कर दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। या मैं खुद, बहुत सारे ऐसे हमारे धर्म से अध्यात्म से जुड़े हुए चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं या समझना चाहते हैं, हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट पर। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके मन में कोई विचार आता है, कोई चीज आप सोचते हैं कि आपको सुनना है, आप समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, पर प्लीज अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें डिस्कस हो, फिर उस दिन आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट दे के चले गए और अगले साल फिर दिखाई दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको फिर आना चाहिए सुनने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे के जो कुछ महीने हम चर्चा करेंगे तो उससे कुछ चीजें जो हमारे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, लाइफ के बारे में, जिसके भी बारे में कुछ समझने की, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कोई नई बुक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपने ध्यान से सुना और 13वें चैप्टर में बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिला, मुझे भी जानने को, आपको भी जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।